स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 7 दिसंबर और दिन सोमवार। भारत पाकिस्तान सुरक्षा सलाहकारों की बैंकॉक में हुई मुलाकात।
भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश सचिव बैंकॉक में जाकर के पाकिस्तानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश सचिव से मिलते हैं, तो मैं कल एक लिहाज से भारत की तरफ से क्लाइम डाउन हुआ।
चेन्नई में धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं हालात। पेरिस जलवायु सम्मेलन में क्या होगा भारत का रुख?
कुछ लोग हमें बेवजह ये कह रहे थे कि जैसे हम कोई दिक्कत पैदा कर रहे हैं। हम दिक्कत पैदा करने वाले नहीं, रोड़ा डालने वाले नहीं, बल्कि हम उनका मार्ग सुलझाने के प्रशस्त करने वाले लोग हैं।
आदिवासियों के मसीहा कहे जाने वाले डॉक्टर बी डी शर्मा का निधन। अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार प्रगति सक्सेना से। भारत और पाकिस्तान ने अपने साझा बयान में कहा है कि दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच बातचीत स्पष्ट, सौहार्दपूर्ण और रचनात्मक रही। ये मुलाकात थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुई। कुछ महीने पहले ये बातचीत स्थगित कर दी गई थी। इस दौरान दोनों देशों के रिश्तों में कुछ तनाव भी आया। इस बातचीत को फिर सकारात्मक तौर पर देखा जा रहा है। इराक ने धमकी दी है कि अगर अगले 48 घंटों के अंदर तुर्की उत्तरी इराक के शहर मोसुल के पास से अपनी सेना नहीं हटाता है तो वो तुर्की के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र जा सकता है। इराक ने कहा है कि तुर्की ने इराक से संपर्क किए बगैर मोसुल में सेना तैनात कर दी, जो कि इराक की राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन है। तुर्की के प्रधानमंत्री अहमद दावूतोग्लू ने कहा कि फिलहाल तुर्की उस क्षेत्र में और सेना तैनात नहीं करेगा जब तक कि इराक की ये चिंता खत्म नहीं हो जाती। फ्रांस के क्षेत्रीय चुनावों की मतगणना तकरीबन पूरी हो गई है। इसमें दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल फ्रंट का जीतना लगभग तय हो गया है। पेरिस में चरमपंथी हमले के कुछ दिनों बाद ही हुए इन चुनावों में अप्रवासी और यूरोपीय संघ विरोधी पार्टी नेशनल फ्रंट 13 क्षेत्रों में से 6 में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। सत्तारूढ़ सोशलिस्ट पार्टी इन चुनावों में तीसरे स्थान पर आती दिख रही है। कैलिफोर्निया में जिन हमलावरों ने गोली मार कर 14 लोगों की हत्या कर दी थी, उसमें से एक के सहपाठी ने बीबीसी को बताया कि ताश्वीन मलिक साफ तौर पर एक धार्मिक महिला नहीं लगती थी। चरमपंथी गुट इस्लामिक स्टेट ने दावा किया है कि ताश्वीन और उनके पति आईएस समर्थक थे। तलाल शहीर, जो 2007 से 2012 तक उनके सहपाठी रहे, उन्होंने बताया कि वो चरमपंथी तो कतई नहीं लगती थी।
She was among the top students. I think she is among the top 5 students from our session. The thing stands
out. वो सबसे प्रतिभाशाली छात्रों में से थीं। उसकी प्रतिभा और मेहनत उसे सबसे अलग करती थी। हम क्लास में ज़्यादातर पढ़ाई की बात ही करते थे। मैं नहीं कह सकता कि वो बहुत धार्मिक थी या धार्मिक कार्यकर्ता थी। वह मिलनसार थी और क्लास की सारी गतिविधियों में हिस्सा लेती थी। ये थे तलाल शहीर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने चरमपंथी गुट इस्लामिक स्टेट के खिलाफ सीरिया में ब्रिटेन के हवाई हमलों को गैरकानूनी करार दिया है। ब्रितानी अखबार द संडे टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इन हवाई हमलों से चरमपंथ का कथित कैंसर और फैलेगा। उन्होंने ब्रितानी तरीके की तुलना रूस से की और कहा कि रूस ने सीरियाई अधिकारियों की मदद से हवाई हमले शुरू किए। राष्ट्रपति असद ने कहा कि मॉस्को की कार्यवाही यूरोप की हिफाजत ही कर रही है। जर्मनी के वाइस चांसलर जिगमार गैब्रियल ने सऊदी अरब से अपील की है कि वो विदेशों में कट्टरपंथी मस्जिदों को वित्तीय मदद देकर अतिवादी इस्लाम का समर्थन न करे। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। आज है दिसंबर की 7 तारीख और दिन सोमवार। कार्यक्रम की शुरुआत भारत पाकिस्तान संबंधों से। भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने कल थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के विदेश सचिव भी मौजूद थे। बैठक खत्म होने के बाद एक संयुक्त बयान भी जारी किया गया। इसमें कहा गया कि खुले और दोस्ताना माहौल में हुई इस बैठक में शांति, सुरक्षा, चरमपंथ और जम्मू कश्मीर समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। दोनों पक्ष रचनात्मक संपर्क को आगे भी जारी रखने पर सहमत हुए हैं। पूरी रिपोर्ट सुनिए अजय शर्मा से।
भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलती दिख रही है। पहले पेरिस में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मुलाकात हुई और अब दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और नसीर खान जंजुआ थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में मिले। रविवार को हुई इस बातचीत में दोनों देशों के विदेश सचिव भी मौजूद थे। भारत के एनएसए डोभाल और पाकिस्तान के एनएसए जंजुआ के बीच शांति और सुरक्षा, चरमपंथ और जम्मू कश्मीर समेत दोनों देशों से जुड़े कई मुद्दों पर बातचीत हुई। इस बातचीत के बारे में पहले कोई जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन बीते दिनों पेरिस में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा था कि दोनों देश बातचीत जारी रखने के ख्वाहिशमंद हैं। शरीफ ने कहा था,
उनकी तरफ से भी इस बात का इजहार किया गया है कि हमें अपने मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए और हमारी तरफ से भी यही अपना ख्वाहिश है। तो मेरा ख्याल है कि जब दोनों तरफ ख्वाहिश है तो फिर मामलात आगे ना बढ़ें तो ये फिर मुनासिब नहीं।
शरीफ ने पेरिस जाने से पहले कहा था कि वो भारत के साथ बिना शर्त बातचीत को तैयार हैं। भारत और पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकारों की मुलाकात के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी संयुक्त प्रेस रिलीज में बताया गया है कि ये बातचीत खुले, दोस्ताना और रचनात्मक माहौल में हुई। इस बयान में कहा गया है कि वो शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध दक्षिण एशिया के लिए दोनों नेताओं के नज़रिए से निर्देशित थे। बातचीत में शांति और सुरक्षा, चरमपंथ, जम्मू कश्मीर, नियंत्रण रेखा पर शांति बहाल रखने समेत दूसरे कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बयान में ये भी कहा गया है कि बैठक में रचनात्मक संपर्क को आगे ले जाने पर सहमति बनी है। इसके पहले रूस के उफा में भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच मुलाकात के बाद अगस्त में दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक होनी थी। पाकिस्तान ने तब ये कहते हुए बातचीत रद्द कर दी थी कि वो भारत की शर्तों पर बातचीत नहीं करेगा।
ये थे अजय शर्मा, लेकिन सवाल है कि भारत पाकिस्तान सुरक्षा सलाहकारों की कल हुई बैठक को कैसे देखा जाए? क्या भारत ने अपने ही पिछले स्टैंड को नज़रअंदाज कर पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, या फिर भारत और पाकिस्तान दोनों पर ही बातचीत शुरू करने का कोई दबाव है? हमारे सहयोगी निखिल रंजन ने दक्षिण एशियाई मामलों के जानकार सुशांत सरीन से बात की और पूछा कि उनकी नज़र में इस मीटिंग के क्या मायने हैं।
देखिए, अगर जमीनी हकीकत देखी जाए तो ना तो इस मुलाकात का कोई मतलब था और ना ही कुछ होने जा रहा है, क्योंकि जो अभी तक अंदेशे आए हैं पाकिस्तान से, उससे ये तो नहीं महसूस होता कि पाकिस्तान की या नीयत भी बदली है या नीति बदली है। तो वो तो जैसे कि तैसी है। तो उस संदर्भ में ये एक्सपेक्ट कर लेना कि कुछ बड़ा होने जा रहा है, हो सकता है कि मुलाकातों का कुछ दौर शुरू हो जाए, लेकिन उससे कुछ निकल के आएगा ये थोड़ी मुश्किल बात लग रही है। मुद्दा ये है कि ये जो कांस्टेंट फ्लिप फ्लॉप होता है भारत सरकार द्वारा, उससे मेरे ख्याल जो भारत की पोजीशन होती है उसकी जो एक संजीदगी है वो काफी हद तक कम होती है, और दूसरे फिर ये समझते हैं कि भारत जो बोलता है और जो करता है उसमें बहुत बड़ा अंतर है, और ये अभी नजर आ रहा है। अगस्त की मीटिंग की आपने बात की, अगस्त से आज तक कुछ ऐसा खास बदला नहीं है जिससे ये महसूस हो कि भारत ने जिस तरह का क्लाइम डाउन किया है उसका कोई रीजन हो। और क्लाइम डाउन तो किया है, क्योंकि अगस्त में भी जब वो वार्तालाप खारिज हुई थी तो उसमें बात यही हुई थी कि एक तो जो उफा की डिक्लेरेशन थी उसके तहत टेररिज्म का मुद्दा आएगा, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान से सरताज अजीज साहब ने ये कहा था कि उनके साथ विदेश सचिव भी आएंगे पाकिस्तान के, और वो एक पैरेलल ट्रैक पे भारतीय विदेश सचिव के साथ बात करेंगे आगे का रोड मैप तय करने के लिए। अब अगर भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश सचिव बैंकॉक में जाकर के पाकिस्तानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश सचिव से मिलते हैं तो मेरे ख्याल एक लिहाज से भारत की तरफ से क्लाइम डाउन हुआ। दूसरी चीज जो जम्मू कश्मीर का जिक्र हुआ, ये भी एक लिहाज से क्लाइम डाउन है, क्योंकि अगस्त में सुषमा स्वराज जी ने बड़े वाजे कर दिया था कि अभी बात सिर्फ टेररिज्म पर होगी, और उस बातचीत के नतीजे में और जैसे जैसे वो प्रोग्रेस करेगी तो बाकी मुद्दे जुड़ते रहेंगे, लेकिन ऑब्वियसली भारत सरकार उससे भी पीछे हटी है।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जब ये कह रहे हैं कि वो बिना शर्त की बातचीत के लिए तैयार हैं, तो इसका क्या मतलब है? क्या जरूरत पड़ रही है उनको ऐसा बयान देने की?
देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो मेरे ख्याल उस बयान को हमने एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया है। वो डेविड कैमरॉन से मिले थे और एक
पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने उस तरह का बयान दिया था। यही चीज पाकिस्तान के सीनियर अधिकारी कई महीनों से बोलते आ रहे हैं कि हम अनकंडीशनल टॉक्स चाहते हैं, लेकिन उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये, उसी के अगले जुमले में वो ये ऐड करते हैं अनकंडीशनल, लेकिन जम्मू और कश्मीर का मुद्दा डिस्कस होना पड़ेगा। तो फिर वो अनकंडीशनल कैसे हुआ, ये तो पाकिस्तानियों को समझ आएगा, हमको तो नहीं समझ आता। दूसरी चीज ये है कि भारत के ऊपर तो कई देशों का दबाव है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू की जाए, और पाकिस्तान के ऊपर भी शायद है, लेकिन हमने जो पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड देखा है वो ये है कि पिछले 13-14 साल में वो एक तरफ तालिबान की हिमायत भी करते रहे, अमरीकी सोल्जर्स को मरवाते भी रहे और अमरीका का प्रेशर भी झेलते रहे। तो अब मेरे ख्याल पाकिस्तान के ऊपर जब प्रेशर पड़ता है तो वो उसको डिफ्लेक्ट, उसको डिसीव करने में कामयाब रहते हैं। भारत के ऊपर प्रेशर अगर पड़ता है तो मेरे ख्याल यहाँ पर जो सरकारें हैं वो घुटने टेक देना ही बेहतर समझती।
ये थे सुशांत सरीन। और अब चलते हैं पेरिस। पेरिस में चल रहे जलवायु सम्मेलन में एक समझौते का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। इस पर आज से सभी देशों के पर्यावरण मंत्री चर्चा करेंगे। भारत के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पेरिस में हैं। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने प्रकाश जावड़ेकर से फोन कर संपर्क किया और पूछा कि वो भारत के पक्ष को कैसे सामने रखेंगे।
भारत इस वार्ता में बहुत सकारात्मक रुख लेके जा रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि समझौता हो, पूरा विश्व लगे कि ये जो जलवायु परिवर्तन का संकट है उससे लोगों को निजात कैसे देंगे। जब लोग चेन्नई की बारिश देखते, उत्तराखंड की त्रासदी देखते, जम्मू कश्मीर की हालत देखते, तब लोगों को लगता है कि ये बदले हुए मौसम का ही ये परिणाम है, और इसलिए हमें इससे बचना है, और इसलिए भारत बहुत सकारात्मक रुख लेके जा रहा है। कुछ लोग हमें बेवजह ये कह रहे थे कि जैसे हम कोई दिक्कत पैदा कर रहे हैं। हम दिक्कत पैदा करने वाले नहीं, रोड़ा डालने वाले नहीं, बल्कि हम उसका मार्ग सुलझाने के प्रशस्त करने वाले लोग हैं, यही हमारा रवैया है।
जी जावड़ेकर जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यही बात कही थी, साफ तौर पर अपना संदेश दिया था, लेकिन जिस तरह की बातें भारत को लेकर की जा रही हैं, आप भारत का पक्ष आगे किस तरह से रखेंगे?
भारत का जो सही पक्ष है वो हम रखेंगे कि 127 करोड़ लोग जो हमारे हैं उनको विकास की राह प्रशस्त होनी चाहिए और उस पर बेवजह बंधन नहीं आने चाहिए। आखिर इस वसुंधरा पर जन्म लेने वाले हर एक इंसान का वही अधिकार होता है जो सबका है, लेकिन सब मिलके हमें ऐसा मार्ग प्रशस्त करना है कि जिसमें दुनिया का जो ये संकट है वो खत्म हो, और उसके लिए तकनीक विज्ञान इसमें भी आगे जो बढ़ोतरी होगी उसका भी उपयोग होगा, और सब मिलके जो काम किया है। आज बताइए मुझे 180 देशों ने अपने लक्ष्य दिए हैं, क्या ये कम है? ये एक दुनिया में क्रांति हुई है, नई संवेदना की ये एक, भाई कितने लोगों ने रिस्पांस दिया है। तो इसलिए उसी को आधार बनाकर पेरिस का समझौता अच्छा हो सकता है।
जहां तक भारत की बात है तो प्रदूषण नियंत्रण को लेकर भी भारत के ऊपर बहुत फोकस है, और दूसरी तरफ भारत का विकास भी दुनिया के विकास के लिए बड़ा जरूरी है, तो ये बात क्या बाकी देश समझ रहे हैं?
नहीं, बिल्कुल समझ रहे हैं, और मैं समझा रहा हूँ कि अगर भारत नहीं बढ़ेगा या विकसनशील देश नहीं बढ़ेंगे तो दुनिया कैसे बढ़ेगी, क्योंकि मार्केट कहाँ से पैदा होगा, व्यापार कैसे बढ़ेगा। तो हरित रास्ते पर चलना है, ग्रीन पाथ को हमें अपनाना है, लेकिन उसके लिए ये विकास होना ही चाहिए, इक्विटी के आधार पर भी, पर कैपिटा के आधार पर भी, और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि विकास होने से पूरा दुनिया का अर्थव्यवस्था मजबूत होती है।
दुनिया के बाकी देश, खासतौर पर विकसित देश, भारत की मदद के लिए आगे आ रहे हैं?
देखो, भारत अपने पैरों पर खड़ा है, लेकिन हम दुनिया के लिए अविकसित देश जो है, बहुत कम विकास जिनका हुआ है, LDCs कहा जाता है, जो छोटे छोटे द्वीप कंट्रीज है उनके लिए हम लड़ रहे हैं, हम सभी विकसनशील देशों के लिए लड़ रहे हैं, हम दुनिया के लिए लड़ रहे हैं, हम जलवायु परिवर्तन के संकट को निजात पाने के लिए लड़ रहे हैं।
पेरिस से ये थे भारतीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जावड़ेकर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इस वक्त अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त अमरीका और इस्लाम की लड़ाई नहीं है बल्कि अमरीका और चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट की लड़ाई है और इस्लामिक स्टेट किसी भी हालत में इस्लाम का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। और बराक ओबामा क्या कहेंगे अभी हम थोड़ी देर बाद में बताएंगे कि वो क्या कह रहे हैं। बहरहाल एक दफ़ा फिर चलते हैं पेरिस। पेरिस पर हुए भयानक चरमपंथी हमले के सिर्फ 3 हफ्ते बाद फ्रांस के क्षेत्रीय चुनावों में दक्षिणपंथी नेशनल फ्रंट पार्टी ने बढ़त हासिल कर ली है। एग्जिट पोल पर यकीन किया जाए तो नेशनल फ्रंट पार्टी की जीत लगभग निश्चित है। वैसे तो ये क्षेत्रीय चुनाव है लेकिन आने वाले दिनों में दक्षिणपंथी पार्टी की जीत फ्रांस के राजनीतिक परिदृश्य को नाटकीय तौर से बदल सकती है। बीबीसी संवाददाताओं से मिले ब्यौरों का सार सुनिए प्रगति सक्सेना से।
फ्रांस के क्षेत्रीय चुनावों के पहले दौर की मतगणना चल रही है लेकिन अब ये लगभग साफ हो गया है कि इन चुनावों में दक्षिणपंथी दल नेशनल फ्रंट अहम जीत दर्ज करेगा। ये जीत मारीन लिपेन के नेतृत्व वाली पार्टी नेशनल फ्रंट को 13 में से 6 क्षेत्रों में आगे कर देगी। एग्जिट पोल्स की माने तो निकोलस सार्कोजी के नेतृत्व वाली रिपब्लिकन पार्टी दूसरी बड़ी पार्टी के तौर पर उभरेगी। पिछले चुनावों में कई बार ऐसा हुआ है कि नेशनल फ्रंट को सत्ता से दूर रखने के लिए सत्तारूढ़ सोशलिस्ट पार्टी और सार्कोजी की रिपब्लिकन पार्टी एकजुट हुई हैं, लेकिन अब की बार निकोलस सार्कोजी ने ऐसे किसी गठबंधन से इनकार किया।
Je proposerai demain à notre bureau politique de refuser toute fusion et tout...
सार्कोजी कह रहे हैं, कल मैं अपने राजनीतिक ब्यूरो के सामने प्रस्ताव रखूंगा कि वो किसी भी विलय से इनकार कर दें। फ्रांस के हित में, आपके क्षेत्रों के हित में स्पष्टता और सामंजस्य ही 2 राजनीतिक विकल्प हमारे पास हैं। मैं फ्रांस के सभी लोगों का आह्वान करता हूं कि वो रिपब्लिकन उम्मीदवार के पक्ष में खड़े हों, जो कि एकमात्र भरोसेमंद विकल्प है, जो उन सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने क्षेत्र और फ्रांस के लिए हार नहीं मानना चाहते और रचनात्मक रहना चाहते हैं। ये हैरानी की बात है कि कुछ ही समय पहले तक नेशनल फ्रंट को एक ऐसी पार्टी के तौर पर देखा जा रहा था जिसे फ्रांस की जनता खारिज कर चुकी है। अब इस दल की नेता दावे से कह सकती हैं कि उनकी पार्टी देश की सबसे लोकप्रिय पार्टी है। नेशनल फ्रंट के इतनी तेजी से मजबूत होने के पीछे फ्रांस की डामाडोल आर्थिक स्थिति तो है ही, सामाजिक अस्थिरता के साथ साथ असुरक्षा की भावना ने भी लोगों का रुख इस पार्टी की तरफ मोड़ा है। दक्षिणी प्रांत से जीत रही मारियन लिपेन ने कहा कि पार्टी की ये जीत ऐतिहासिक तौर पर महत्वपूर्ण है।
C'est un score absolument historique, extraordinaire, presque inattendu, hein, au vu des circonstances.
मारियन लिपेन कह रही हैं, ये बहुत अद्भुत नतीजे हैं। परिस्थितियों को देखते हुए तो कहा जा सकता है कि हमें ऐसी उम्मीद थी, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि हम इन नतीजों से बहुत खुश हैं और सम्मानित महसूस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज पुरानी व्यवस्था खत्म हो गई और वामपंथी भी इसके साथ खत्म हो गए हैं। फ्रांस के क्षेत्रीय चुनावों के दूसरे दौर की वोटिंग 13 दिसंबर को होनी है। ये क्षेत्र स्थानीय परिवहन, शिक्षा और आर्थिक विकास को बहुत प्रभावित करते हैं और इनके पास काफी अधिकार भी होते हैं। चुनाव से पहले हुए ओपिनियन पोल से साफ था कि 13 नवंबर को पेरिस में हुए चरमपंथी हमले के बाद आप्रवासी विरोधी और यूरोपीय संघ विरोधी नेशनल फ्रंट पार्टी की लोकप्रियता काफी बढ़ गई थी। हालांकि सिर्फ इसी को पार्टी की जीत का जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। पिछले कुछ वर्षों से नेशनल फ्रंट लगातार अपने प्रभाव को मजबूत कर रही है। अगर क्षेत्रीय चुनावों में दक्षिणपंथी पार्टी जीत जाती है तो वो दिन दूर नहीं कि फ्रांस के केंद्र का शासन भी इसी पार्टी के हाथ में आ जाएगा और तब फ्रांस की राजनीतिक परिस्थिति तो बदलेगी ही, फ्रांस की अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में भी महत्वपूर्ण बदलाव आ सकता है।
ये थी प्रगति सक्सेना। और अब चलते हैं चेन्नई। बाढ़ का कहर झेल रही चेन्नई में हालात तेजी से सामान्य होते जा रहे हैं। रेल और विमान सेवाएं कल शुरू हो गई थीं। शहर के अधिकतर इलाकों में बिजली भी बहाल हो गई है। ताज़ा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं चेन्नई, जहां टेलीफोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ हैं नितिन श्रीवास्तव। नितिन, क्या आपको मेरी आवाज़ साफ आ रही है?
जी बिल्कुल इकबाल साहब, बताएं।
तो नितिन, टेलीफोन की साफ आवाज कम से कम ये तो बता रही है कि संचार व्यवस्था पूरी तरह से बहाल हो गई है।
हाँ, दरअसल अगर मैं कहूँ कि जो हालात है वो यहाँ पर सामान्य होते जा रहे हैं, धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, तेजी से दरअसल सामान्य नहीं हो रहे हैं, क्योंकि टेलीफोन लाइन का ये हाल है कि कल शाम को, रात को, देर रात अपने दूसरे कार्यक्रम में दिल्ली स्टूडियो से लोग मुझे संपर्क करते रह गए, मैं यहाँ से करता रह गया, हमारी बात नहीं हो सकी। तो हालात अभी उतनी तेजी से बेहतर नहीं हो रहे हैं जितनी तेजी से बताया जा रहा है। बात करें, कल बैंक पहली बार खुले हैं थोड़ी देर के लिए, कल पहली बार ATM में पैसा आया है। रेलवे, भारतीय रेल का ये कहना है कि सोमवार यानी आज के बाद से वो 60-70% ट्रेनों को बहाल कर पाएंगे। सब्जियों की बात करें तो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 15 दिसंबर तक जो सब्जियां आती हैं चेन्नई में आसपास के गांव से जिलों से वो सामान नहीं हो पाएंगी। तो अभी अभी एक बहुत एक लंबी सी लड़ाई है जो चेन्नई के ही नहीं, दूसरे और तमाम जिले जो जिनके बारे में बताया जा रहा है वो बराबरी के स्तर पर प्रभावित है, चाहे कडलोर हो चाहे पौंडिचेरी हो, वहां के लोगों के लिए बहुत लंबी जंग है जिसमें सरकार के साथ साथ जो वॉलंटियर्स हैं, जो तमाम स्वयं सेवक हैं, जो तमाम NGOs हैं, उन सबको बहुत लग के बहुत लंबी मेहनत करनी।
और क्या चेन्नई में जो लोग हैं वो अभी भी शिविरों में हैं या वो धीरे धीरे अपने घरों को लौट रहे हैं?
सैकड़ों हजारों लोग हैं इकबाल जो चेन्नई में अभी भी शिविरों में हैं। कल हम एक शिविर में गए थे, वो राजा जी जो सी राजगोपालाचारी थे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, उनका मेमोरियल है, राजा जी मेमोरियल, बड़ा सा पार्क है, उसमें करीब 2.5 फीट पानी भरा है और अंदर एक गोपुरम है, एक स्तूप जिसको कहते हैं उस तरह का, वहां पर दीवारों पर राजा जी की तस्वीरें दिखती हैं महात्मा गांधी के साथ, माउंट बेटन के साथ, लेकिन दरअसल जो वो बड़ा गोपुरम है वहां 200 लोग पिछले 5 दिनों से सिर्फ चादरों पर लेटे बैठे अपने घरों में लौटने का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक कोई राहत नहीं है, उनके घरों में पानी है और तमाम NGOs और चेन्नई के स्थानीय निवासी खाने के पैकेट लेके जाते हैं वहां पर। उन लोगों के पास शौचालय नहीं है क्योंकि वो गोपुरम है, वो एक ऐसा स्थान था, मेमोरियल था जहां पर सैलानी आया करते थे कुछ दिन पहले तक। तो इस तरह की तमाम दिक्कतें अभी बरकरार हैं चेन्नई में।
जी, बहुत शुक्रिया नितिन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात उनकी जिन पर रहेगी आज हमारी नजर।
भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में 17 बैंकों का कंसोर्टियम आज विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस की संपत्ति की नीलामी करेगा। बैंकों का 8000 करोड़ रुपए का कर्ज किंगफिशर पर बकाया है। साल 2013 के बाद से इस कंपनी ने बैंकों को कोई रकम नहीं दी है। भाजपा के अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय परिसंघ और उत्तर प्रदेश की आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने आज दिल्ली के रामलीला मैदान में पदोन्नति व निजी क्षेत्र में आरक्षण के मुद्दे पर महारैली का आयोजन किया है। दोनों संगठनों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में दलित कर्मचारियों और अधिकारियों को जबरन पदावनत किया जा रहा है। आज से इसराइल के प्रमुख त्योहार हनुक्का की शुरुआत हो रही है। एक हफ्ते तक चलने वाले इस पर्व को यरूशलम के दूसरे मंदिर के अर्पण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में बुधवार को होने वाले गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल सम्मेलन से पहले खाड़ी देशों के विदेश मंत्री बैठक कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस बैठक में सीरिया और यमन में चल रहे संघर्षों पर चर्चा होगी। बातचीत में ग्रीस की अर्थव्यवस्था मुख्य मुद्दों में से रहेगी। यूरोजोन की बैंकिंग यूनियन के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। पेरिस की एक अदालत टैक्सी ऐप उबर पर फैसला सुनाएगी। उबर पर भ्रामक वित्तीय व्यवहार के आरोप पर अदालत में सुनवाई चल रही थी। उबर ने प्रतिबंध लगने के बाद भी अपनी कम कीमत वाली सेवा उबर पॉप को जारी रखा था। अगर आरोप सिद्ध होता है तो उबर पर 2,00,000 यूरो का जुर्माना लग सकता है।
पेशे से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, शिक्षा से गणित में PhD, लेकिन जिंदगी भर आदिवासियों की लड़ाई लड़ने के कारण शोहरत पाने वाले डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा नहीं रहे। मध्य प्रदेश काडर के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी डॉक्टर BD शर्मा का कल रात देहांत हो गया। वो ग्वालियर में अपने घर पर दोनों बेटों और पत्नी के साथ थे। पिछले एक साल से वो बीमार थे और शारीरिक तौर पर भी काफ़ी कमजोर हो गए थे। आज दोपहर 12 बजे ग्वालियर के लक्ष्मीनगर शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। भारत में आदिवासियों की दुर्दशा और समस्या से जुड़े मुद्दे पर वे लगातार आवाज़ उठाते रहे, लेकिन पिछले दिनों वो तब सुर्खियों में आए थे जब छत्तीसगढ़ के सुकमा ज़िले के कलेक्टर को माओवादियों से छुड़ाने के में उन्होंने प्रोफेसर हरगोपाल के साथ अहम भूमिका निभाई थी। उनकी मौत की खबर मिलते ही मैंने उनके साथ काम कर चुके प्रोफेसर हरगोपाल से बातचीत की और पूछा कि वो उन्हें कैसे याद करेंगे।
वो तो बहुत एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी ह्यूमन बीइंग है और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिविल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। वो तो गरीब आदमी जैसा जीते हैं वो वैसा, अब अगर आप दिल्ली में अगर उनका मकान देखे तो एक स्लम में था और आदमी के पास तो कुछ पोजीशंस नहीं थे, घर तो बहुत छोटा घर, उसमें कुछ फैसिलिटीज नहीं है। ये नहीं कि उनके पास कुछ पैसे नहीं है या, बट उनका ये निर्णय था कि जीना जो है एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग के जैसा जीना और जिंदगी में जो है कुछ मटेरियल पोजीशंस का नहीं। वो एक स्पिरिचुअल आदमी था, स्पिरिचुअल बोल तो रिलीजियस सेंस में नहीं है, मगर ऐसा आदमी था कि जब उनका जिंदगी जीवन का जो स्टाइल है, मेरे ख्याल से IAS ऑफिसर्स या पूरा सिविल सर्वेंट हिस्ट्री में हमारे को ऐसा सिविल सर्वेंट नहीं मिलेगा जो BD शर्मा जी के जैसा जिए। वो आदिवासी का जो प्यार करते थे, आदिवासी वो बस्तर का कलेक्टर था और जिधर भी उनको अगर काम दिए, जो कुछ काम दिए, वो आदिवासी गरीबी दलित के लिए जो है जिंदगी भर जिए, जिंदगी भर काम करे और उन लोगों का प्यार करे। ये जो है हमारे लिए, मैं इनका जो कुछ देखा वो तो बहुत एक्सेप्शनल है।
डॉक्टर हरगोपाल, आपने आदिवासियों के क्षेत्र में और गरीबों और दलितों के लिए उनके योगदान को की बात की, तो मैं विशेष तौर पे यही जानना चाहूँगा कि जब वो SC ST के कमिश्नर रहे और जब कलेक्टर भी रहे उससे पहले, तो पूरे जीवन में उन्होंने जो आदिवासियों और दलितों के लिए कुछ विशेष किया, उनके उस काम को आप कैसे आँकते हैं?
वही कह रहा हूँ मैं, अब SC ST कमीशन में जब वो काम कर रहे थे तो उनका तनख्वाह जो है वो इंदिरा गांधी से कहे कि मैं 1 रुपया तनख्वाह लूंगा मगर आप जो है हमारे काम में दखल नहीं देना चाहिए। ये इंदिरा गांधी से उनका ये था। जब वो मिस्टर गांधी उनसे पूछे कि आप SC ST कमीशन में, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो वो बहुत नया था पॉलिटिक्स के लिए, गवर्नेंस के लिए, तो वो एक दिन BD शर्मा जी से कहे कि शर्मा जी आपका काम क्या है और आपका स्टेटस क्या है। तो BD शर्मा जी ने कहा, राजीव जी हमारा स्टेटस तो अगर पैसे से देखे तो मैं 1 ही रुपया ले रहा हूँ तो मेरे को स्टेटस ही नहीं है, मगर मैं कोई किसी को कोई मेरे को खरीद नहीं सकते जिंदगी में, हमारा जो है nobody can purchase me, ये हमारा स्टेटस है। तो दिस टाइप ऑफ करेजियस आंसर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो जो कहे हैं कि वो तो बहुत एक्सेप्शनल था। और आदिवासी के लिए जो है वो जो किताबें लिखे या उन लोगों के काम करे, और ये कहते थे कि ये जो 1950 और 26 जनवरी जो है और या 26 नवंबर 1949 जब भारत के संविधान का एक्सेप्टेंस हुआ, तो कहते थे कि भारत के लिए तो मैं आज़ादी आए मगर उस दिन जो है भारत के आदिवासी आज़ादी खो गए।
हैदराबाद से ये थे प्रोफेसर हरगोपाल जो बता रहे थे कि डॉक्टर BD शर्मा जिनका कल रात ग्वालियर में निधन हो गया, वो उन्हें कैसे आंकते हैं। और अब प्रमुख समाचार।
BBC समाचार। भारत और पाकिस्तान ने अपने साझा बयान में कहा है कि दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच बातचीत स्पष्ट, सौहार्दपूर्ण और रचनात्मक रही। इराक ने धमकी दी है कि अगर अगले 48 घंटों के अंदर तुर्की मोसुल के पास से अपनी सेना नहीं हटाता है तो वो तुर्की के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र जा सकता है। फ्रांस के क्षेत्रीय चुनावों में दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल फ्रंट का जीतना लगभग तय हो गया है। कैलिफोर्निया में जिन हमलावरों ने गोली मारकर 14 लोगों की हत्या कर दी थी, उनमें से एक के सहपाठी ने BBC को बताया है कि ताशफीन मलिक साफ तौर पर एक धार्मिक महिला नहीं लगती थी। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने चरमपंथी गुट इस्लामिक स्टेट के खिलाफ सीरिया में ब्रिटेन के हवाई हमलों को गैर कानूनी करार दिया है। ब्रिटेन के अखबार द संडे टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इन हवाई हमलों से चरमपंथ का कथित कैंसर और फैलेगा। जर्मनी के वाइस चांसलर ज़िगमार गैब्रियल ने सऊदी अरब से अपील की है कि वो विदेशों में कट्टरपंथी मस्जिदों को वित्तीय मदद देकर अतिवादी इस्लाम का समर्थन न करे। बीबीसी समाचार।
तो नमस्कार, भारत की ये सभा यहीं समाप्त होती है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली राजेश चौहान ने। आपसे अगली मुलाकात होगी अभी से ठीक एक घंटे बाद यानी 8 बजे कार्यक्रम विश्व भारती में, लेकिन आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। और इकबाल अहमद को अब अपने तमाम साथियों के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।